और यदि आप मेरी बातों को याद रखो मेरे छात्रों, तो कल के दिन मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपसे इस सप्ताह में चुनाव की विशेषता के विषय में बात करूंगा और जो शब्द चॉइस है मैं उसके लेटर्स का या उसके वर्णों का इस्तेमाल करूंगा, जिससे मैं चुनाव के अनेक विशेषताओं को बता सकूं और आपको उसके विषय में समझा सकूं। यदि आपको कल की बात याद होगी तो कल हमने बात की कि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हमारा कौन सा है और वो चुनाव से हमारी यात्रा का आरंभ होता है और वह है प्रभु यीशु मसीह को चुनने का चुनाव। और यह तो सबसे आसान चुनाव है, परंतु आज मैं आपको अगले कदम के विषय में बात करना चाहूंगा जिससे हम स्वस्थ चुनाव कर सकें। और चॉइस शब्द में अगला वर्ड जो है वो एच है, और एच फॉर ह्यूमिलिटी, अर्थात एच नम्रता के लिए। और नम्रता को संसार बहुमूल्य नहीं जानती है, परंतु उसके बिना आप पाएंगे कि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के ऊपर नहीं है। आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, आप सफलता पूर्वक हो सकते हैं संसार के दृष्टिकोण से, परंतु यदि नम्रता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह व्यर्थ है। उदाहरण स्वरूप, एक मनुष्य था जिसने बहुत ही सफलता पूर्वक और खुशनुमा जीवन जिया इस संसार के इतिहास में, और वह था प्रभु यीशु मसीह। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पास भी वही खुशनुमा सफलतापूर्वक जीवन रहे, तो आप यीशु मसीह को अपना मॉडल बना लें, अपना रोल मॉडल बना लें, उसे अपना गुरु बना लें। और जैसे यदि आप एक अच्छा बैट्समैन बनना चाहते हैं तो आप सचिन तेंदुलकर के पास जाएं, क्योंकि वह सबसे बेस्ट है। और कई लोग कह सकते हैं कि द्राविड़ के पास जाइए क्योंकि वह बैंगलोर का लड़का है, परंतु यह मेरा विषय नहीं है। परंतु हमें नम्रता के सिद्धांत की ओर देखना है, और इसीलिए तो बाइबल में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाइबल महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उसमें यीशु मसीह की शिक्षाएं दी गई हैं। और सबसे पहली शिक्षा जिसे यीशु मसीह ने नए नियम में दिया, वह पाया जाता है मत्ती 5 अध्याय में और उसके 3रे वचन में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन है। और ये एक और तरीका कहने का, धन्य है वे लोग जो नम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप देखिए मित्रों कि हम जो इस संसार में हैं बहुत ही छोटे समय के लिए हैं। यद्यपि आप 100 वर्ष या 90 वर्ष की आयु तक जिए, परंतु यदि हम इसकी तुलना करें अनंत काल के सामने तो यह बहुत ही छोटा समय है। और एक राज्य है जो आने वाला, और वो अनंत काल का राज्य है जो हमेशा हमेशा तक बना रहेगा, और उसी को तो स्वर्ग का राज्य कहा गया है। और यीशु मसीह जो कह रहा है वह यह है कि वह हमें स्वर्ग के राज्य का हमें सब कुछ देना चाहता है। आप इसे इस प्रकार से कल्पना करिए कि एक खजाना है जो बहुत सारे अलग अलग बक्सों में छुपा हुआ है, बहुत सारे खजाने के बक्से हैं, सब में ताला लगा हुआ है। और यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि वह हमें एक मास्टर की देगा, एक मास्टर चाबी देगा, उस चाबी से ये सारे खजाने की पेटियां खुल जाएंगी। और वह जो चाबी है वो नम्रता है। यदि आप नम्र होंगे तो स्वर्ग का जो संपूर्ण राज्य है वह आपका हो जाएगा, आने वाला साम्राज्य आपका हो जाएगा स्वर्ग का। यही तो नम्रता की सामर्थ है। तो नम्रता होने का क्या अर्थ होता है? बाइबल कहती है कि फिलिपियों 2 अध्याय में उसके 3रे वचन में कि जो नम्रता है वो मन में होती है, और यह उसमें नहीं दर्शाती कि आप जो कर रहे हैं, या आपके कहने में भी नहीं दर्शाई जाती, परंतु आपकी सोच में प्रदर्शित होती है। और इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने आप को दीन नम्र बना करके ऐसे दूसरों के सामने दिखाएं या गरीब बने रहें, परंतु यह इस बात का ज्ञात करना है कि जो कुछ आपके पास है वह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, और आपने इन चीजों को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया, चाहे वो आपकी बुद्धिमानी हो, चाहे आपकी स्पोर्ट्स की काबिलियत हो, या आपकी खूबसूरती हो, ये सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई हैं। और जब आप नम्र होते हैं तो आप इस बात को ज्ञात करते हैं, स्वीकार करते हैं, और इसलिए आप दूसरों को कभी भी नीची नजरों से नहीं देखते हो, और उनसे नहीं सोचते हैं कि आप उनसे बेहतर हो, या आप उनसे बुरा व्यवहार नहीं करते हो, इसलिए क्योंकि उनके पास वो चीज नहीं है जो आपके पास है। यीशु मसीह ने हमें मत्ती 11 अध्याय में एक और बात कहा, उसका 29 वचन में, कि हम यीशु मसीह से नम्रता सीख सकते हैं। तो ना केवल उसने हमें नम्रता सिखाया कि नम्रता क्या होती है, परंतु उसने हमें नम्रता क्या है वो दर्शाया भी। और कल मैं आपसे कह रहा था कि यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि वो स्वर्ग से हमारे लिए नीचे आया, इस संसार में मनुष्य बन करके रहा, और अपने दौड़ को पूरी करके, और उसकी मृत्यु जो हुई सबसे ज्यादा निचले दर्जे की मृत्यु हुई, जो एक अपराधी मरता, और हम भारत के अनेक सड़कों पे हम कुत्तों को देखते हैं। मेरे भारत की यही यादें तो मुझे बहुत आज भी यादें हैं कि रात को कुत्ते कैसे भौंकते हैं सड़क पे। यदि आप सड़क पे एक भूखे कुत्ते को देख रहे हो जिसे घाव लगा हुआ है और वो एकदम दुबला पतला कुत्ता है और बहुत ही बीमार सा दिख रहा है, तो आपको उसके लिए तरस होगा और आपको लगेगा कि क्या मैं उसके लिए कुछ कर पाऊं। और मुझे लगता है कि आप उसे जरूर उसकी मदद करना चाहेंगे, आप उसे कुछ खाना देंगे, उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। परंतु यह और ही बात होगी यदि आप उसके लिए कुत्ते के समान बन जाएं और उसके लिए कुत्ते के जैसा जीवन जिए और उसके लिए कुत्ते के समान दुख उठाएं। और यही तो सच्ची विनम्रता है मेरे बहुमूल्य मित्रों, यही तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। वो परमेश्वर था, उसने अपने आप को नम्र किया और हमारे समान बना। और जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो फासला था वो बहुत 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 बड़ा फासला था, परंतु जो फासला मनुष्य और कुत्ते के बीच में वो बहुत कम है। परंतु यीशु मसीह ने यही किया और उसने हमारे सामने एक अनुसरण वाला जीवन रखा। वो उसने उदाहरण जी करके दिखाया जब वो इस संसार में आया। पहला पत्रस 5 में बाइबल बताती 5:5 में कि जब कभी परमेश्वर हमको नम्र होते हुए देखता है तो वो हमें एक और वस्तु देता है जिसे अनुग्रह कहते हैं। और आपने अनुग्रह शब्द को पहले सुना होगा। यदि आपने नहीं भी सुना है तो मुझे नहीं पता कि क्या आप सुन करके भी इसके अर्थ को जानते हैं कि नहीं। और आप अनुग्रह को ऐसा समझ सकते हैं, यह रुपया है, पैसा है स्वर्ग की। यदि आपके पास पृथ्वी में बहुत सारा पैसा है तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा उन चीजों को करने के लिए। और ठीक वैसे ही यदि आपके पास अनुग्रह है तो आप कुछ भी कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। और उसका अर्थ है कि इस संसार में, परमेश्वर के राज्य में रहते हुए, इस संसार में जीवन व्यतीत करते हुए और अनंत काल में भी परमेश्वर का राज्य आपका है और आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो अनुग्रह है वो स्वर्ग का पैसा है। परंतु जैसा वचन कहता है, और वह अनुग्रह आपको केवल तभी दे सकता है जब आप नम्र बनोगे। और इसलिए जो नम्रता है वह रहस्य है ताकि हम सामर्थ्य रख सके और अधिकार रख सके परमेश्वर के राज्य में। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा जो आपको इसे याद रखने में मदद करे, ताकि हम जाने कि हम कैसे वास्तविक तौर पर जीवन जी सकते हैं। आप देख रहे हो कि संसार जो है वो अंत की कगार की ओर जा रही है, और जो भी चीज संसार में है वह भी मिटते जा रही है, और जो भी चीज जिसे संसार बहुमूल्य जानती है उसका कोई भी अर्थ नहीं है, वो व्यर्थ ही मानी जाती है। पैसा या धन, ऐश्वर्य, वो सब शून्य है। यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो उसका मतलब यह कि आपके पास एक बहुत बड़ा शून्य है। और खूबसूरती या सुंदरता के विषय में क्या, यदि आप सोचते हैं कि आप बहुत खूबसूरत है तो वह भी एक शून्य है। यदि आप सोचते हैं कि आप सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं अपने क्लास में, हैंडसम है, खूबसूरत है अपने क्लास में, तो यह क्या है, एक बहुत बड़ा जीरो के समान है, शून्य के समान। शोहरत, प्रसिद्धि, और हर व्यक्ति जाने कि आप कौन हो, आप संसार में बहुत प्रसिद्ध हो, और यह सारी वस्तुएं हैं जिनके पीछे संसार पीछे पड़ा है, यह भी एक शून्य है। और आप कितना भी, आप सोचो कि आप कितना भी प्रसिद्ध हो, विश्व प्रसिद्ध हो, यह एक बड़ा शून्य है। क्लास में प्रथम आना, और जो शिक्षक लोग हैं मुझसे इस बात के लिए नफरत ना करें, परंतु यदि आप सोचते हैं कि यह बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत बेहतरीन करना है जो आप कर सकते हो, परंतु यदि आप मेहनत करते हैं और आप उसके विषय में कुछ सोचते हो तो वह जीरो है। और ऐसी बहुत सारी बातें, मैं इस पे बहुत उदाहरण आपको दे सकता हूं, परंतु यह शून्य के अलग अलग प्रकार हैं। और इससे कोई मतलब नहीं कि आपके पास कितने शून्य है। यदि आपके पास एक शून्य है तो वह शून्य, यदि आपके पास 100 शून्य है तो वो भी शून्य ही है। और इससे कोई मतलब नहीं कि आपके पास कितना बड़ा जीरो है, यदि बड़ा जीरो है तो भी जीरो है, छोटा जीरो है तो भी जीरो है। और गलातियों 6:3 एक वचन है, यदि आप सोचते हो कि आप कुछ व्यक्ति हो इस बात को जानते हुए कि ये सारी वस्तुएं शून्य है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप इन चीजों को याद रखें कि ये वस्तुएं अंततः शून्य ही है। और आप देखें कि यीशु मसीह केवल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वैल्यू है, मूल्य है। और यदि हम इस बात को जान लें कि ये वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दें, तो वो इन सारी वस्तुओं को, इन चीजों को एक अनंत काल का मूल्य प्रदान करेगा। तो यहां पर प्रश्न यह नहीं कि आपके पास कितने शून्य है या कितने बड़ा शून्य है, परंतु परमेश्वर ही है जो निर्धारित करता है कि आपके पास कितने शून्य होंगे और कितने बड़े शून्य होंगे। परंतु जो मुख्य बात है वह यह है कि क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में प्रथम है। और जब आप इस बात को ज्ञात करते हैं कि ये सारी वस्तुएं शून्य हैं और जब आप दूसरों को नीचा नहीं देखते हैं, तब उसके बाद जो भी परमेश्वर आपको देता है तो आपका संपूर्ण जीवन उन चीजों के साथ अर्थपूर्ण बन जाता है। इसलिए यीशु मसीह को आप सब बातों में प्रथम स्थान दें और इसलिए सारी वस्तुएं फिर अपने जगह में सही से आ जाएंगी। व्यवहारिक तौर पे नम्रता का मतलब होता है दूसरों की चिंता करना, उनकी आवश्यकता के विषय में सोचना, केवल अपनी आवश्यकता के विषय में नहीं। जो संसार के लोग हैं वो दूसरों का फायदा उठाना चाहते हैं, जीवन में सफल होने के लिए दूसरों का फायदा उठाते हैं, परंतु जब आप नम्र होंगे तो आप दूसरों के विषय में सोचेंगे। और एक तरीके में जब यीशु मसीह हमारा उदाहरण था वह यह था कि उसने उन लोगों के साथ दोस्ती की जिनसे कोई दोस्ती नहीं करता था। उसके दिनों में कुछ ऐसे लोग थे जिनको कोढ़ जैसा एक बहुत इन्फेक्शन वाली बीमारी थी और उन लोगों के पास कोई उठना बैठना नहीं चाहता था। लोग उनका न्याय करते थे। गरीब गरीब मछुआरे थे जिन्हें लोग सोचते थे कि ये बहुत खराब लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उनके साथ दोस्ती किया। और आज एक तरीके से मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय बच्चों, जिससे आप अपने आप को नम्र कर सकते हो वह यह है कि आप उन लोगों के साथ दोस्ती करें जिनके साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है, जो अकेला है, जिसे लोगों ने छोड़ दिया है, आप उनके साथ दोस्ती करें और आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में यीशु मसीह की नम्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं। और कुछ बातों पर जोर देके मैं समाप्त करना चाहूंगा जिसे मैंने कल कहा था। ये सारी जो चुनाव है उसे आप आरंभ कर सकते हैं। आपको एक हफ्ता अगले हफ्ते के लिए रुकने की या 2 साल 5 साल रुकने की जरूरत नहीं है। आप चुनाव आज ही कर सकते हैं। आप आज ही चुनाव कर सकते हैं कि आप मसीह को चुने और आज आप निर्णय ले सकते हैं कि आज आप नम्र बनने का चुनाव कर रहे हैं और आप आने वाले जीवन में अर्थात अनंत काल के जीवन में आपको किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं होगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी भलाइयों के लिए, तेरी करुणा के लिए। तूने हमसे प्रेम किया, तेरा धन्यवाद हो। और तूने हमें नम्रता का उदाहरण दिखाया और हमें यह बताया कि हम तेरे उदाहरण का अनुसरण कर सके। इन प्रिय बच्चों को और इनके शिक्षकों को तू आशीषित कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।